इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम को सुने याद दिलाना चाहता हूं,
क्योंकि आज की शाम बहुत अहम शाम है जो हम सब जिंदा के लिए क्या है जी, खुदावन के कलाम में से बहुत ही जबरदस्त क्या है जी, याद दहानी है। क्योंकि आज मैं चाहता हूं आज की शाम थोड़े से वक्त में हम खुदा के कलाम में से देखें, जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब, तो वहां पर खुदावन यीशु मसीह बड़ा ही खूबसूरत वादा ना सिर्फ अपने शिगिर्दों के साथ बल्कि तमाम कलीसिया के साथ करता है, और कलीसिया को बड़ी ही जबरदस्त सच्चाई से वाकफियत होती है कि दरअसल जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो हमारे लिए किस तरह की जगह तैयार है। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बड़े वाजिया तौर पर बयान करती है कि जिस जगह पर हम जाएंगे वो कैसी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज की शाम अपनी माँ की यादगारी में जो हमें छोड़कर इस दुनिया को क्या है जी, उस दुनिया में चले गई है जिसके लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में कुछ इस तरह कहा था। जो बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं वो मेरे साथ निकालें, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब, हम उसकी पहली आयत से 4वीं आयत तक पढ़ेंगे। और खुदावन्द का कलाम यूं फरमाता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह नहीं जानते, तुम वहां की राह जानते हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो ये आखिरी पैगाम है, इससे पहले यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़कर अपने मिशन अपने मंसूबा को जिसके लिए खुदा ने इस जमीन पर भेजा था पूरा करें। क्योंकि ये पैगाम जब हम देखते हैं 13वीं बाब से लेकर 17वें बाब तक क्या है जी, वो पैगाम है जिसे बाला खाना का क्या कहते हैं जी, खुतबा या खताब, जो यीशु मसीह ने आखिरी रात पकड़वाए जाने से पहले अपने शिगिर्दों के साथ कलाम किया। सो इस पैगाम में ना सिर्फ यीशु मसीह ये सिखाता है कि मैं तुम्हें नमूना दूंगा कि किस तरह तुम्हारे पांव धोने हैं, बल्कि बयान करता है कि जिस तरह भेड़िए को जब मारा जा, भेड़िया जब भकाएगा जी तो भेड़ों को क्या करेगा जी, तितर बितर करेगा। और इस हिस्से में हमें खुदा के कलाम में से क्या मिलती है, नबूवत मिलती है कि किस तरह खुदा क्या करेगा जी, यीशु मसीह आसमान पर जाएगा और रूहुल कुद्दस जमीन पर आएगा और लोग खुदा का मकदस बनेंगे। ये सारी तफसील है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इस शाम हम खुदा यीशु मसीह के इस वादे पर गौर करें कि उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। और यहां पर मालूमात यीशु ने दी है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और मुझे जाना है, और मैं जाता हूं ताकि फिर आकर तुमको वापस ले जाऊं। बहुत दफा सवाल उठाया जाता है कि जब हमारे अजीज मरते हैं तो वो क्या देखते हैं, उनका क्या तजर्बा होता है। क्योंकि हमें इस आयत से पता चलता है कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत है, वो जगह बहुत ही निराली है। क्योंकि मुकाशवा की किताब जब हम उसका 21वां बाब पढ़ते हैं तो नया यरूशलम जो आसमान से जमीन पर उतरेगा उसके बारे में बयान किया गया है, वो कितना खूबसूरत, कितना निराला, उसकी सड़कें कैसी होंगी, उसमें क्या कुछ होगा। और उसके लिए हमें थोड़ी सी क्या मिलती है जी, चमक धमक मिलती है कि अबदियत कैसी होगी। लेकिन आज की शाम मैं चाहता हूं कि हम इस सवाल पर गौर करें कि जब हमारे अजीज हमें छोड़कर जाते हैं तो वो किन को मिलते हैं, वहां पर क्या होता है। क्योंकि हम सबको पता है अमीर आदमी और लाजर की जिंदगी से कि जब कोई मरता है तो जो बुरे लोग हैं उनकी रूह को क्या किया जाता है जी, अजाब की जगह में डाला जाता है, बुरे लोगों से मुराद यानी जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो कहां पर जाते हैं, अजाब की जगह पर। और जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर अपना शख्सी निजात दहिंदा हुए उससे निजात दहिंदा कबूल करते हैं, लाजर क्या है जी, वो गरीब लाजर क्या है, तस्वीर है कि फरिश्ते उसकी रूह को आते हैं लेकर क्या करते हैं जी, बाप इब्राहिम की गोद जिसे फरदोस कहा गया है यहूदी अतबार से वहां पर ले जाते हैं। सो ये हमें पता है कि जो गुनाहगार हैं वो अजाब में, जो ईमानदार हैं वो इब्राहिम की गोद में। लेकिन मैं आ चाहता हूं कि हम कलाम खुदा में से एक बड़ा ही खूबसूरत हवाला देखें जिससे हमें पता चलेगा कि जब हमारी रूह या हमसे पहले जो जा चुके हैं वो दरअसल देखते क्या हैं। और इसके बारे में हमें इब्रानियों के खत में जिक्र मिलता है। मैं चाहता हूं कि हम इस पर थोड़े से वक्त में गौर करें ताकि हमारी आंखें, हमारे दिल के ख्याल और रोशन हो जाएं। सिर्फ इससे वाकफियत ना हो कि अमीर आदमी और गरीब आदमी का वाक्या बयान करता है कि सुकून की जगह है, इत्मीनान की जगह है, उनके और हमारे दरमियान एक बड़ा घड़ा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में से आज एक हवाला देखेंगे जो बहुत दफा नजरअंदाज किया जाता है, और ये हमें मिलता है पुराने नए अहदनामा में अब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 12 बाब। जब हम उसकी 22वीं आयत को देखते हैं तो यहां पर मुसन्नफ पूरी तस्वीर पेश करता है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी रूह किन किन मरहलों से गुजरती है और क्या होता है। तो यहां पर अब्रानियों का खत जब हम देखते हैं तो 22वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम सहून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्ते। पालूस रसूल के मुताबिक जब हमारा जिस्म का खेमा ढाया जाता है तो हमें वो खेमा मिलता है जो क्या है जी, गैर फानी है। फानी क्या होता है जी, गैर फानी में जब मिल जाता है तो क्या होता है जी, हम आंख झपकते ही क्या है जी, अपने इस वतन से जहां से चला वतन है यानी कि अपने आसमानी मुकाम पर पहुंच जाते हैं। सो जब पहुंचते हैं तो पहली बात क्या है जी, वो मुकद्दस शहर जिसके बारे में यूहन्ना ने यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और वो जगह क्या है जी, जब तैयार होगी तो तुमको अपने आप साथ ले जाऊंगा। जब यीशु आएगा बहुत से लोगों को साथ लेके जाएगा, लेकिन जो मरते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं जी, उनका इस्तकबाल करने के लिए कौन खड़े हैं, यहां पर लिखा है उस आसमानी यरूशलेम के पास क्या है जी, लाखों फरिश्ते। लाखों फरिश्ते जो महरूम यीशु मसीह में इंतकाल करते हैं उनको क्या करते हैं, वेलकम कहते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि मैं कहूंगा कि ऐ मेरे बाप के प्यारो आओ और खुदा की उस बादशाही को मीरास में लो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। इस शहर के हम मुंतजर हैं, लेकिन हमसे पहले हमारी बुजुर्गा इस शहर का मजा चख चुकी है। और ये बात जो हम देखते हैं लाखों फरिश्तों से, जब पालूस रसूल को देखते हैं तो वो उसके लिए जो सोच ख्याल पेश करता है, रूमी जब फतह हासिल करके जब वो जंग जीत कर आते थे तो पूरा शहर क्या होता था जी, गलियों बाजारों में निकलता था उनके इस्तकबाल के लिए कि उनको क्या करे जी, जंग से वापसी में क्या कहें जी, खुश आमदीद कहें। यहां पर जो सोच है वो यही है, जब हम इस जिस्मानी जंग को जो रूह और गोश के दरमियान नहीं बल्कि शरारत की रूहानी फौजों में लगी हुई है, जब हम इस वतन को छोड़कर अपने उस वतन में जाते हैं तो क्या होता है, लाखों फरिश्तगान परेड के लिए खड़े होते हैं, वो कहते हैं खुश आमदीद, वेलकम, जी आया नो। ये है ईमानदारों की रूहों का पहला तजर्बा। और दूसरी बात क्या होती है, और उन पलोठों की जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। दूसरे लोग कौन हैं जिसमें हम जब कलीसिया को देखते हैं, कलीसिया के तमाम लोग, जब हम पहले शहीद स्तिफनस को देखते हैं और उससे लेकर अब जितने शहीद हुए हैं वो क्या करते हैं जी, जो कोई इस जमीन पे अपने सफर को खत्म करता है सब मुकद्दसीन, पत्रस कहता है वेलकम, पालूस कहता है वेलकम, यूहन्ना कहता है वेलकम, और क्या है जी, सब मुकद्दसीन जो कलीसिया जमात है वो क्या करती है जी, उनको वेलकम कहती है कि वेलकम होम, वेलकम होम। उन पलोठों की जमात क्या है जी, पलोठों से मुराद जो है इसका मतलब यह है कि जो हमसे पहले मुए, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया है कि पलोठों में से पहला जो मुआ और जिंदा हुआ है उसके तरह बथेरे और मुएंगे और फिर क्या होंगे जी, जिंदा होंगे। सो पलोठों से मुराद यही है, ये नहीं कि पहला बेटा या बेटी नहीं, वो तमाम जो पहले मुए हैं उनकी जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं। याद है यीशु मसीह ने जब दो दो करके 70 शिगिर्दों को भेजा, उन्होंने मौजज़ा किए, बहुत से अजीब काम किए यीशु के नाम से। यीशु को आकर रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि यीशु हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, बुद्रूहे तेरे नाम से हमारे ताबे हैं, वो सब खुश थे। यीशु मसीह ने कहा इससे खुश ना हो कि बुद्रूहे तुम्हारे ताबिया है मेरे नाम से, बल्कि इससे खुश हो तुम्हारे नाम कहाँ पर लिखे हैं जी, आसमान पर। सो हर एक ईमानदार जो यीशु पर ईमान रखता है उसका नाम कहां पर लिखा है जी, किताबे हयात में। सो इसके बाद क्या होता है जी, और सबके मुनसिफ खुदा और कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहें। पहले लाखों करोड़ों फरिश्ते मिलते हैं, फिर नए अहदनामे की तमाम जमात उसको वेलकम कहती है, और तीसरी जगह पर खुदा बाप खुद खड़ा है और कहता है कि मैं हूं वो जिंदों और रास्तबाजों की रूहों को मुकर्रर करने वाला, और तुम्हें क्या करता हूं अपनी बादशाही में, अपने आराम में क्या कहता हूं जी, वेलकम कहता हूं। सो खुदा बाप इंतजार में रहता है, ठीक जैसे मुसर बेटे की कहानी, उसका बेटा दूर दराज मुल्क में नाफरमानी करके चला गया, लेकिन जब यहूदी सोच को तहरीरों को पढ़ते हैं तो वो बाप हर शाम अपनी छत के नुक्कड़ पर खड़ा होकर रास्ता देखता था कि कब मेरा बेटा घर आएगा। वैसे ही आसमानी बाप हम सबका मुंतजिर है, मुंतजिर है कि कब हम अपने उस अवधि घर में जाएंगे। और मकाशवा की किताब में जब पढ़ते हैं, जब आसमान से इस पुकार को सुनते हैं कि खुदा के बर्रे उन ईमानदारों की रूहों का बदला जे जो तेरे नाम से सताए गए हैं, कैद खानों में डाले गए हैं और हलाक हुए हैं और कैदी हुए हैं, तो आगे से खुदा उनका बर्रा क्या कहता है, कहता है कि उनकी मानद बथेरे हैं जो क्या होंगे जी, इस तरह मेरे नाम की खातर दुख उठाएंगे, तब जब समाम वहां पर होंगे खुदा की हजूरी में फिर मैं इंतकाम लूंगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़के हुए उस खून के पास, उसके बाद आखिर में कौन है जी, दुल्हा खड़ा है, यीशु मसीह खड़ा है। और यीशु का वो कलाम पूरा होता है, यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं हूं तुम मुझे वैसा ही देखोगे। आसमान को आपको बताना चाहता हूं कि कोई जिस्मानी चीज नहीं होगी सवाय एक के, कोई जिस्मानी चीज नहीं होगी सवाय एक के, और वो जिस्मानी चीज क्या होगी, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जब तोमा ने उसकी पसली में हाथ डालकर उसके हाथों के सराखों को देखा, तो जब यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं हूं तुम वैसा ही मुझे देखोगे, तो पूरे आसमान पर अगर हमें कोई जिस्मानी निशान मिलेगा तो वो क्या होगा जी, ईमानदारों के लिए जैसे पलूस के बदन पर वो तमाम कोड़ों के निशानात, वैसे ही हम यीशु के हाथों पर उसके कीलों को, उसकी पसली को, उसके छेदे जादे को देखेंगे। यही हमें जिस्मानी निशानात मिलेंगे, उसके अलावा कोई और जिस्मानी चीज उसकी हजूरी में दाखिल नहीं होगी। सो आखिर में यीशु से कहेगा वेलकम जी आया नो, धन्यवाद कि जिसके लिए मैं मुंतजर था, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि खुदा क्या है जी, सब्र का खुदा है। जब हम मत्ती की झील को पढ़ते हैं तो 17वीं बाब से, पहले बाब की 17वीं आयत से हम जब पढ़ते हैं, इब्राहिम से लेकर दाऊद तक और दाऊद से बाबल तक और बाबल से यीशु मसीह और यूसुफ तक, जब पढ़ते हैं तो टोटल 42 पुश्तें बनती हैं जो खुदा ने एक अपना वादा पूरा करने के लिए क्या किया जी, इंतजार किया। खुदा ने पहला वादा अपना जो पदेश 3:15 में किया था वो क्या था, कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा, मैं तेरी और औल के नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा जी, अदावत डालूंगा, और क्या होगा जी, वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। 42 पुश्ते लगी इस वादे को पूरा करने के लिए, पदेश से लेकर मत्ती की इंजील तक, कि वो कवारी से पैदा होगा। कितनी पुश्ते लगी, 42 पुश्ते। और यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। सवाल ये उठता है, यीशु को गए हुए 2000 से ज्यादा साल हो चुके हैं, अब सवाल ये उठता है कि वो जगह कैसी होगी, वो मकान कैसा होगा, वो कैसा मकान होगा कि कितनी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 2 साल लगे हैं, लेकिन वो बिल्डिंग जो नया यरूशलम खुदावन खुदा अपने लोगों के लिए तैयार कर रहा है, जो बर्रे के लहू से धुले हैं, जो उसकी हजूरी में होंगे, उनके लिए कैसी मार्वलस जगह वो तैयार कर रहा है, हम उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, उसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा होगा। सुने दी सड़कां, हम सबको याद है भाई साहब ने ये गीत गाया, सोने दिया सड़कां ते दूध दिया नहरां ने। वहां पर क्या होगा, नए यरूशलम में एक दरख्त होगा जिससे 12 मौसम जारी होंगे, और जिससे क्या होगा जी, वो यशब का दरिया होगा, हीरे जवरा सोना चांदी और 12 तख्त और 24 बुजुर्ग फरिश्तगान, हर एक चीज, और लिखा है कि खुदा हमारे दरमियान खैमा जन होगा। So, ये है झलक आसमान की, कि हम सब जानते हैं कि जी लाजर मर गया, गरीब आदमी मर गया, एक दोजक में गया, दूसरा आराम में गया, लेकिन सवाल बहुत दफा ये उठता है कि उनके साथ होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं जी जिस रात बंदा मरता है उस रात कब्र में बंदे के पास 2 फरिश्ते आते हैं, एक खब्बी जगह एक सच्ची जगह, और बैठकर क्या करते हैं, उनसे हिसाब किताब करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसकी किताब में हर एक का ईमाल और जिन्होंने बर्रे के लहू से अपने आप को धोया है उनका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। इसलिए नया यरूशलम बड़ा ही खूबसूरत होगा, और उसका तजर्बा हमारी बुजुर्गा कर रही है, उसका तजर्बा पौलुस रसूल ने किया जब वो तीसरे आसमान पर उठाया गया, उसने वो वाकयात वो जगह वो चीजें देखी, और खुदा के रूह ने कहा कि इनको मत लिखना क्योंकि आदमी की बर्दाश्त से बाहर है। तीसरे आसमान का जायका और लुत्फ और हजूरी और वहां की जो जगह है वो बयान से बाहर है, लेकिन उसकी झलक यहां पर हमें मिलती है कि लाखों फरिश्ते कहेंगे वेलकम वेलकम होम। तमाम पलोठों की जमात जो हमसे पहले पुराने और नए अहदनामा के जितने ईमानदार हैं वो सब फूलों की हार की हारों की माला या जो भी है वहां पर वो लेकर खड़े होंगे। एक वाक्य है बड़ा ही जबरदस्त, ये हुआ अमेरिका में, एक मिशनरी जोड़ा जंगल में खिदमत करने के लिए गया, उन्होंने 21 साल से ज्यादा खिदमत की, हजारों हजारों रूहों को उन्होंने जजीरों पर जीता, और जब वो वापस आ रहे थे तो वो उसी जहाज पर थे जो ऑस्ट्रेलिया से एक मैच जीत कर आ रहा था, और उसे देखने के लिए जो मैच जीत कर आया था हजारों की तादाद में हार और फूल बरसाने वाले खड़े थे, और जब उन्होंने देखा कि उसको वेलकम करने के लिए हजारों की सूरत में लोग आए हैं उस खिलाड़ी को जो मैच खेल कर आया है, और जब उस मिशनरी जोड़े ने एक दूसरे की तरफ देखा तो खावन कहता है अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कि हमारे इस्तकबाल को कोई नहीं आया जो हमें फूलों की माला पहलाए। और उसकी बीवी ने आगे से क्या कहा, उसने कहा रिचर्ड वी आर नॉट होम येट, अभी हम अपने घर नहीं पहुंचे, ये दुनिया हमारा घर नहीं, जब हम अपने घर पहुंचेंगे तो लाखों करोड़ों फरिश्ते हमें वेलकम कहेंगे, खुदा खुद हमें अपनी बाहों में लेगा, यीशु खुद हमसे कहेगा तुम मेरे वो खून खरीदे हुए ट्रॉफी हो जिनके लिए मैंने ये इंतजाम किया है। इसलिए उसकी बीवी ने कहा रो मत, ये हमारा घर नहीं, जब हम अपने असली घर जाएंगे लोगों को नहीं फरिश्तों की क्या होगी जी, वहां पर भीड़ होगी जो हमें वेलकम कहेगी। पौलुस रसूल इसका तजर्बा कर चुका था, इसीलिए वो कहता था कि मरना मेरे लिए मसीह और जीना क्या है जी, जीना मेरे लिए मसीह और मरना क्या है जी, नफा है, क्योंकि वो तीसरे आसमान का मजा चख चुका था, वो जान चुका था कि वहां पर क्या है। वो नहीं चाहता था कि यहां पर रहे, लेकिन वो चाहता था कि मैं कूच करके उस जगह पर चले जाऊं जो यीशु ने तैयार की है। इसलिए हम सबके लिए क्या है जी आज का पैगाम, हम अपनी जिंदगी में अपनी अपनी दौड़ को सफर से दौड़े, अपनी अपनी दौड़ को दौड़े, किसी दूसरे के ट्रैक में ना जाएं, अपनी अपनी बलाहट, अपनी अपनी खिदमत, अपनी अपनी रेस को दौड़े, क्योंकि हमारी बुजुर्गा अपनी रेस को क्या कर चुकी है जी, खत्म कर चुकी है। और बाइबल मुकद्दस में हमें चंद एक लोग मिलते हैं जिनको पता था इससे पहले वो मौत का मजा चखे। यीशु को पता था वो मरेगा, इसलिए उसे पता था। पालूस को पता था, वो जाने से पहले कहता है मैंने अपनी रेस को, अपनी दौड़ को खत्म कर लिया और मैंने अपनी ईमान की कुश्ती को लड़ लिया, इसलिए अब तेरी बारी है कि उस ईमान की दौड़ को सब्र से दौड़ और अंजील की मनाती कर और खुदा के कलाम की तालीम दे और क्या कर, अपनी दौड़ को खत्म कर। हम सबके सामने दौड़ है। हमारी बुजुर्ग जितने भी लोग मरते हैं वो अपनी दौड़ को खत्म करके चला जाते हैं, चले जाती हैं। हमें अपनी अपनी दौड़ को दौड़ने के लिए पालूस से सलाह लेनी होगी। पालूस रसूल कहता है अभी मैं कामल नहीं हुआ, अभी मैं कामल नहीं हुआ, निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं ताकि अपनी दौड़ को पूरा करूं। हम सबके निशान सामने कौन है? सलीब का पैगाम। हमारी हिम्मत कौन है? यीशु मसीह। हमारा हौसला क्या है? यीशु मसीह। हमको जब गिरे होते हैं उठाता कौन है? यीशु मसीह। जब हम गुमराह होते हैं कौन राह दिखाता है? यीशु मसीह। जब हमारे हौसला और शिकस्ता दिली का बादल हम पर छाया होता है तो कौन अपने जलाल से कहता है थम जा? यीशु मसीह। इसलिए आज की शाम क्या ही जबरदस्त नजारा है कि वो हमारी बुजुर्गा आसमान से नीचे देख रही है। इसके लिए भी एक हवाला है पत्रस के खत में, वक्त दरकार नहीं। खुदा का कलाम बयान करता है कि तमाम मुकद्दसीन की रूहें जो हमसे पहले खिदमत कर चुके हैं वो आसमान से नजर करके मुश्ताक हैं कि हम किस तरह अपनी अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं। इसलिए हमें इंतजार करना है लाखों फरिश्तों का कि वो हमें कहें जी आया नो, जी आया नो। इसलिए हमारी बुजुर्गा खुदा की हजूरी में उस जगह पर है, उस मकाम पर है। उसने वो सोने की सड़कें, उसने वो तमाम यरूशलम जो आसमान से जमीन पर उतरेगा खुदा के कलाम के मुताबिक वहां पर है। सो आए हम खुदा के हजूर झुके, खुदा के हजूर झुके और उस खुदावन को धन्यवाद कहें जिसने हम सबको इतना आला मकाम और दर्जा के अपने बेटे और बेटियां और अपने लोग और उसके एलची बनाया है जमीन पर के सुलह के पैगंबर बने। खुदा बाप आज की शाम हम सब के लिए जो कलाम तूने अपने कलाम में से किया है तेरा शुक्र करते हैं कि हम इस जगह के लिए मुंतजर रहें। अगर हमें दुख है, हमें अगर तकलीफ है, अगर बीमारी है, अगर हमारे पास अच्छा घर नहीं, अगर हमारे पास कोई और मुश्किल है तो हम याद रखें कि तू हमारे लिए वो घर तैयार कर रहा है जो हाथों से बनाया हुआ नहीं बल्कि क्या है जी, अबदी है और कभी भी ढाया नहीं जाएगा। खुदावन तमाम खानदान को इस यादगारी की इबादत में यीशु का कलाम याद दिलाया गया है कि उसने कहा कि क्यामत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा हाँ वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। खुदावन लोग मरों की बहुत सी यादगारी करते हैं और तूने हमें हुक्म दिया है मेरी यादगारी में यही किया करो, हम तुझे याद करते हैं तू के जिंदा है। आज अपने बुजुर्गों को और बुजुर्गों को जिनको याद करते हैं क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर तो मुर्दा है लेकिन रूहानी तौर पर जिंदा होकर तेरे उस नए यरूशलम आसमानी मकाम में है। खुदावन हम सबको वो आंखें, वो दिल, वो ख्याल, वो जज्बातें जो रूह कुदस के वसीला से तूने पालूस पर जाहिर किए ताकि हम कहें कि जीना मेरे लिए मसीह है, सांस लेना मेरे लिए मसीह है, उठना बैठना मेरे लिए मसीह है, मेरे गीतों का गाना मसीह है, मेरी गवाही देना मसीह है, मेरा जीना मसीह है और मरना नफे की बात है। कि मैं अपने खानदान में अपने बाप अपने भाई यसु और रूह के साथ अब तक रहूंगा। खुदावन आज के कलाम के वसीला से सब कुछ बड़ी बरकतें जो दूर से सफर करके हैं उनके सफर में उनके साथ होना ये सब कुछ मांगता हूं यसु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। बाकी की मीटिंग को कैप्टन साहब लीड करेंगे।
हम सब अपने सिर को झुकाएं और हम